ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ओम अज्ञानतिमिरस्य ज्ञानशलाकय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं सर्वेण भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथन्वितं तं सजीवं साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितं च हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्कुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री प्रभुपाद हरे कृष्ण। थोड़ा जब लोग एक चीज सिखाएंगे जो आप लोग के बहुत प्लीज बहुत जरूरी है, आज कोई रिवीजन नहीं होगा, भक्ति रसामृत सिंधु से भी नहीं होगा, जो लोग आज नहीं आए हैं वो बहुत बड़ा चीज़ खो जाएंगे आज, ठीक है। तो जो लोग हैं यहाँ पर उनको फायदा होने वाला है, तो कृपया ध्यान से बैठ जाइए। अब हर किसी के पास नोटबुक होना चाहिए, क्यों बताने जा रहा हूँ, बहुत सारे ग्रंथों में नहीं मिलेगा। आचमन कब ले आइए, मैं आप लोग को आचमन करना और अर्चे बगैर की पूजा करना बताऊंगा, क्योंकि हम लोग इतना स्टैंडर्ड का फॉलो नहीं कर पा रहे हैं जो करना चाहिए वास्तव में, ठीक है। तो जब हम लोग भगवान की सेवा करने जाते हैं तो हम सबके घर में फोटो हैं, पिक्चर्स लगे हुए हैं, उनकी पूजा करते हैं, हम सभी लोग करते हैं। कितने लोगों के घर में लगा हुआ है, ऐसे उसे क्यों उठा रहा, कोई ऐसे उठा रहा, कोई ऐसे उठा रहा, मतलब क्या कई घर में आधा फोटो लगाया तो सबके घर में है। कितने लोग पूजा करते हैं, इसमें से करते हैं सभी लोग, तो ठीक है। अगर नहीं भी करते हैं तो सीखना चाहिए, जितना ज़्यादा हम ये पूजा अर्च विधि जो है वास्तव में द्वापर युग का है, लेकिन कलयुग में इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये भागवत विधि यानी हरिनाम कर लेना, हरिनाम बांटना, भागवत सुनना, इसको शुद्ध बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अगर आप पूजा अर्चन करेंगे तो आप शुद्ध होते हैं, क्योंकि पूजा अर्चना के लिए आपको शुद्धता का पालन करना पड़ता है, स्नान करना पड़ेगा, कपड़े पहनने पड़ेंगे, तो इस कारण सब शुद्ध हो जाते। जब आप शुद्ध हो जाते हो तो हरि नाम आसानी से ले सकते हैं। बस यही उद्देश्य है डीटी वर्शिप का मुख्य, क्योंकि भगवान के संपर्क में जितना हम रहेंगे उतना जल्दी ही शुद्ध होंगे, है ना। भगवान पवित्र हैं, भगवान से संबंधित प्रत्येक वस्तु पवित्र है, तो एक दूषित व्यक्ति जो मन से कलुषित है वो जब भगवान के पास जाता है तो शुद्ध हो जाता है, ऐसा कई जगह स्थानों बताया गया है। यहाँ तक कि भगवान को देखने के लिए भगवान के विग्रह की पूजा करना चाहिए, बस फिर शुद्ध हो जाएंगे तो भगवान दिखेंगे। जैसे ध्रुव महाराज को जब नारद मुनि क्या बोलते हैं, भगवान को देखना चाहते हो तो भगवान के पहले मूर्ति का स्थापना करो और उसकी पूजा करो, पूजा करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करो, और ऐसा करोगे तो तुम शुद्ध हो जाओगे। और उसके बाद तुम क्या करो, तपस्या करो। उसके बाद क्या होगा, अंत में आपको भगवान का दर्शन हो गया। वैसा ही हुआ, आप जितने भी लोग देखोगे सब लोगों ने यही किया। अर्च वगैरह को करना पड़ेगा पूजा, तो अर्च वगैरह की पूजा करते समय ना सबसे पहला कार्य जो होता है कि आपने आपको शुद्ध करना। जब तक खुद शुद्ध नहीं हुए हैं तो कैसे सेवा करने जाएंगे, या पवित्र करना अपने आप को। तो हम जब सो के उठते हैं तो स्नान करना, सो के उठते तुरंत खुला करना, ब्रश करना, शौच जाना, स्नान करना, स्नान करके धुले हुए कपड़े पहनना। तो स्नान करके धुले हुए कपड़े पहनने के बीच में एक क्रिया होती है, उसको बोलते हैं आचमन क्रिया। तो स्त्रियाँ तो अपने पूरे कपड़े पहनती हैं, पर पुरुषों को सिर्फ धोती पहन के पहनना जरूरी है। कोपिन या अंडरगारमेंट्स पहनकर धोती पहनने के बाद आचमन करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद आपको तिलक लगाना है। तिलक लगाने के पहले आचमन किया जाता है। अगर आप शुद्ध नहीं हुए हैं तो तिलक लगाएंगे तो तिलक शुद्ध नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपने अशुद्धता में तिलक लगाया। जैसे किसी घर को सजाते हैं तो पहले धोते हैं, साफ करते हैं, स्वच्छ करते हैं, फिर सजाते हैं, है ना। पहले सजा दोगे फिर साफ करोगे तो क्या होगा, धूल मिट्टी वापस आ जाएगी, है ना। वैसे ही शरीर को पहले शुद्ध बनाया जाता है, स्वच्छ किया जाता है, फिर उस पर तिलक से उसको डेकोरेशन किया जाता है, राइट। तो जब आप एक आचमन कप है, इसको आचमन बोलते हैं, इसको आचमन कप का चम्मच बोलते हैं, ठीक है। आचमन कप कई प्रकार के होते हैं, अलग अलग शेप के हो सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन तांबा का जो आचमन होता है सबसे शुद्ध माना जाता है। तांबा एक वैसी वस्तु है जो शुद्ध भी है और इसमें कोई और मिलावट नहीं होता है, किसी अन्य धातु का मिलावट नहीं होता है, बाकी सब में कुछ ना कुछ मिलावट होता है। आप कॉपर का फॉर्मूला पढ़ोगे साइंस में, कॉपर ही रहता है, लेकिन आयरन पढ़ोगे तो उसमें कार्बन भी रहता है। इसमें भी कार्बन होता है पर नेग्लिजिबल कार्बन होता है। आप जैसे ब्रोंज बेल मेटल, जैसे करताल बेल मेटल है, या ब्रोंज कांसा, इस सब में मिक्स रहता है कुछ ना कुछ, पर इसमें मिक्स नहीं होता। इसलिए भगवान को सबसे ज़्यादा पसंद नहीं है याद रखना। और इसलिए जितने भी इलेक्ट्रिसिटी होती है सब में इसका प्रयोग करते हैं, इसका या सिल्वर का, क्योंकि इसमें बहुत ऐसा ये गुड कंडक्टर भी होता है, शुद्ध होता है इसलिए। इसलिए भगवान को आचमन करने के लिए, कुछ भी करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इवन भगवान का आचमन भी कराना किसी से, ठीक है। तो जब आप इसको लेकर आते हैं तो सबसे पहले आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, पर अच्छा मुद्रा ये रहता है, उंगली को सीधा रखना, ठीक है। तो ब्रह्म कूप बोलते हैं, ठीक है। नहीं या तो लिख लीजिए, इसको याद रखिएगा। हालांकि डे टू वर्षिप पूरा प्रैक्टिकल चीज़ है, लेकिन फिर हम भूल जाते हैं, इसका प्रयोग नहीं करेंगे। तो ब्रह्म कूप को हम क्या करेंगे, इसमें ना उल्टे हाथ से पहले ऐसे आप इसको हाथ से शुद्ध कर लीजिए। जैसे आज उसको लेने के लिए अपने हाथ में डालते हैं, गिर जाता है, इस उल्टे हाथ में डाली तो हाथ शुद्ध हो गया। फिर इसको क्या कीजिए, इस पर लीजिए और उंगलियों के जो गैप रहता है, उंगलियों का गैप है ना, उससे से छिड़क दीजिए इसके चारों ओर, ठीक है। जो भी वस्तु को आपसे छिड़कते हैं उसके साथ एक मंत्र बोलते हैं, ओम अस्त्राय फट। क्या बोलते हैं, ओम अस्त्राय फट। ये शुद्धिकरण मंत्र होता है जो कि किसी वस्तुओं को शुद्ध करता है, जहाँ पवित्र वस्त्र होते हैं। जैसे आप फूल लाते हैं, अब फूल वाले ने पता नहीं किस में रखा होगा, पुराने बोरे में रखाता है, उसी में करता है, वो कभी कभी नाक साफ करता होगा, फिर सुई से बनाता होगा माला। आप उसको ले आए, भगवान को चढ़ा दिए, आपने सिर्फ जल छिड़क दिया। लेकिन अगर आप जल को ऐसे झाँक में छिड़क कर ओम अस्त्राय फट बोलते हैं तो वो वस्तु पवित्र हो जाती है। मंत्र से पवित्र होता, याद रखिए। पानी जैसे बोलते हैं ना प्रभु जी, हम ये जल पीते हैं, आचमन करते हैं, इसे पीने से, आप लोग करते हो ना, अभी पूजा के पहले जल में डाला पी लिया, जल में डाला पी लिया, हाथ में डाला पी लिया, उससे कोई पवित्र नहीं होता। ऐसे कितना गिलास पानी पी रहे हो, पवित्र थोड़ी होते हो, मंत्र से पवित्र होते हैं। मंत्र मुख्य है, याद रखिए। तो इसलिए आप जब जल डाल रहे तो उसे मंत्र बोलते हो। यहाँ तक कि अगर आप कोई भोजन कर रहे हैं, अगर आप भोग लगा नहीं है किसी कारणवश, तो उसको पवित्र करना चाहिए। ऐसे पुराने जवान लोग करते थे, है ना, ओम अस्त्राय फट बोलते थे। आप कुछ भोजन भी ला रहे हो, भोग ला रहे हो, भोग लगाने के पहले प्लेट में सजा दिया, जल हाथ में लीजिए, ओम अस्त्राय फट, जल छिड़क दिया। बहुत ज़्यादा पानी नहीं लेना, नहीं तो सूखा आइटम जो गीला हो जाएगा। ठीक है, कोई भी प्रश्न है ना वो मुझसे पूछिए। ठीक है, कोई भी प्रश्न, अभी आपको डाउट आ रहा है मंत्र में, मुद्रा में, हाँ एक बार, क्योंकि देखिए आप गलत चीज़ यहाँ से लेके जाएंगे, जिंदगी भर गलत पालन करेंगे उसका, एक भी चीज़ गलत मत लीजिए। ठीक है, तो प्रश्न है आपका गंभीर, नहीं तो आपस में बात मत कीजिए। हाँ, तो उसी के बारे में बता रहा था। अच्छा, ओके। तो उसके बाद आप इसमें अपना अनामिका, ये उंगली छोड़कर, वैसे अनामिका उंगली को, इसको सिर्फ जो स्किन का भाग है वो पानी में स्पर्श कीजिए और उसको उसके बाद बोलिए। कौन सा मंत्र? सातों मंत्र, उसको नदियों को बुलाया जाता है, गंगे च यमुने गोदावरी सरस्वती नर्मदी सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्निधिं कुरु। हे गंगा, जमुना, सरस्वती, नर्मदे, सिंधु, कावेरी, कृपया आप इस जल में प्रविष्ट होइए। इसका मंत्र का मतलब है, ये मंत्र पुराने मंत्रों को लिखा हुआ होगा, आप उसको ले सकते हैं, आज ही लीजिए, यानी तो सब भूल लाएंगे। ठीक है, ये मंत्र बोलने के बाद ये जल में ये पवित्र हो गया, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, देखिए आप कोई नदियों का जल ले सकते हैं, गंगा का जल लिए तो मंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं, यमुना का जल लेके कर रहे हैं तो मंत्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप विदेश में हैं, जैसे दिल्ली में कोई नदी नहीं है, तो जल लेते हैं, टैप वाटर लेते हैं, नल से लेते हैं, तो इसको शुद्ध करने के लिए मंत्र बोलना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद अब आपको ना आचमन करना, खुद को शुद्ध करने के लिए, आपने गंगा जी को बुला लिया, पात्र को, स्थान को पवित्र कर लिया, अब वो चीज़ें पवित्र हो गई, इसलिए अपने आप को पवित्र करने के लिए मंत्र को बोलना पड़ेगा। तो उल्टे हाथ से आचमन से, आचमन चम्मच से हाथ में लीजिए जल को, जल बीच में आएगा, उस जल को देखकर बोलना है। पहला मंत्र हम लोग ये तिलक लगाते हैं तो बोलते हैं ओम केशवाय नमः, क्या बोलते हैं, उसको बोलना है। ठीक है, जब उसको किसको जल को, ये लिखिए, ये आप लोग भूल जाते हैं, जल को नहीं देखते हैं, और क्या करते हैं पीने के बाद बोलते हैं ओम केशवाय नमः, 99% लोग यही बोलते हैं पीने के बाद ओम केशवाय नमः, बिल्कुल गलत है। आप उसको देखिए क्या बोलिए, ओम केशवाय नमः। फिर जो आपका संधि स्थल है, हाथ का और हथेली का संधि स्थल, संधि स्थल बोलते हैं ना, वहाँ से पीजिए, इसका नहीं इसे रगड़ी पीना है, पी लेते ना वो अच्छा नहीं तरीके, झूठा हो जाता है हाथ, यहाँ पीने से झूठा नहीं मानते। ठीक है, पहला मंत्र क्या लिखिए, ओम केशवाय नमः। फिर उसके बाद फिर जल लीजिए, जरूरत नहीं है धोने के, धो लेंगे कोई बात नहीं है। उसके फिर जल को देखिए, ओम नारनाय नमः, नारायण होता है ना, नारायण आ की मात्रा या नारायण, फिर लीजिए उसको, देख कर बोलना है, जल को देख कर बोलना जरूरी है और मंत्र उच्चारण करना जरूरी है, कोई ट्रेन नहीं छूट रही हमारी। ठीक है, अब उसके बाद बोलिए, ठीक है, याद रखिए पीते समय जल आपके मुंह से कपड़ा निकलना चाहिए, नहीं तो कपड़ा अशुद्ध हो जाएगा, कभी कभी पीते हैं लोग तो कपड़ा गिर जाता है। फिर उसके बाद लास्ट वाला क्या है, ओम माधवाय नमः, क्या, ओम माधवाय नमः। मैं पीने के बाद अब आपका हाथ ही झूठा माना जा रहा है, क्योंकि हम पिए तो झूठा मान लिया, किसी न किसी वजह से झूठा हो जाता है, उठ टच हो जाता है, तो इसलिए क्या करना है, ओम गोविंदाय नमः उसी हाथ में डालना जिस हाथ आपने पिया था। फिर उसके बाद सीधे हाथ से इधर वाले ओम विष्णुवे नमः, क्या बोलना है, विष्णुवे, विष्णुवे, देखिए यहाँ कंठ बोलते हैं ना, गोविंद कंठ कृपे, हम लोग तिलक लगाते थे यहाँ बोलते हैं। तो पहला मंत्र क्या था, ओम केशवाय नमः, दूसरा क्या था, ओम नारनाय नमः, तीसरा ओम माधवाय नमः, चौथा ओम गोविंदाय नमः, पांचवा ओम विष्णुवे नमः। पवित्र करने के लिए 24 मंत्र होते हैं, मैंने आपको सिर्फ पांच ही बताया है, क्योंकि पांच एक मंदिर के लिए सफिशिएंट है, एक घर के लिए। मंदिर में हम लोग करते हैं तो बहुत सारे करने पड़ते हैं, वामनाय नमः श्रीधवाय नमः ऋषिकेशवाय नमः उपेन्द्राय नमः जनार्दनाय नमः हरे नमः कृष्णाय नमः अध्यक्षाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः। बहुत सारे मंत्र हैं, 24 मंत्र होते हैं पूरे अंग को शुद्ध करने के, तो इतना आवश्यक नहीं है आपको। अब एकदम फोटो से डील कर रहे हैं तो ओके, लेकिन इतना तो करना जरूरी है। अब आप शुद्ध हो गए, और शुद्ध होने के बाद एक और मंत्र पढ़ते हैं, पर वो भी वेद का मंत्र है, वो ऋग्वेद का मंत्र है, ओम तद् विष्णु परमं पदं सदा पश्यन्ति सूर्यो। मंत्र की आवश्यकता नहीं है आपको, आप सिर्फ एक बार मंत्र बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। अब आप सेवा करने के लिए तैयार हैं। अब ये जो हाथ आपने आचमन किया था, शरीर जो है अब किसका हो गया, कृष्ण का हो गया। अब इससे कोई पवित्र चीज नहीं छूनी चाहिए, जो कृष्ण की चीज है उसी को छूना है, ठीक है। अब वहाँ से आए, आपने आचमन कर लिया, आप क्या कर रहे हैं, जमीन में प्रणाम कर रहे हैं, टेबल उठा रहे हैं, चेयर उठा रहे हैं, तब हाथ पवित्र हो रहा है। इसलिए जो सेवक होता है और जो भगवान की सेवा करता है, जो असिस्ट करता है, वो दोनों को कुछ और चीज़ नहीं करना चाहिए, भगवान की वस्तु छूनी चाहिए। आपने आचमन कर लिया, आपके हाथ शुद्ध हो गए, आपने हाथ आचमन क्यों किया था, भगवान की सेवा के लिए। लेकिन आप चेयर उठा रहे हैं, कारपेट उठा रहे हैं, वहाँ बल्ड बकेट उठा रहे हैं, कचरा उठा रहे हैं, अगर मान लीजिए कहाँ, तो शुद्ध फिर से आपको आचमन करना पड़ेगा। हाँ, पूरा 5 बार वो मंत्र बोलना पड़ेगा। तो अच्छा क्या रहता है कि जो पुजारी है उस पर आचमन करने के बाद फिर भगवान की वस्तु छूना चाहिए, भगवान का ऑल्टर, भगवान का ड्रॉर, भगवान का थाली, भगवान का फूल, भगवान का अगरबत्ती, भगवान का घंटी, ये सब छू सकते हैं। लेकिन आप सोच रहे हैं कि मैं कारपेट को छूंगा, टेबल को छूंगा, चेयर को छूंगा, माइक को छूंगा, ग्लास को छूंगा, ये सब खुशी नहीं किसी वस्तु से दूषित है। जैसे मान लिया मैंने छीका आँख और फिर उसको पकड़ लिया हूँ, तो ये अभी कुछ धोते तो है नहीं इसको, तो ये अशुद्ध अभी भी, तो इससे कैसे भगवान की सेवा कर सकता हूँ। कोई बोलेगा प्रभु जी वैष्णव का छीक तो कितना बढ़िया होगा, कृपा मिलेगी। वैष्णव का छीक लेकिन भगवान के लिए नहीं है, वैष्णव का छीक भगवान सर्वोत्तम है, अपना नहीं गिलाता। तो उसके बाद आप भगवान को ऑफर करते हैं, मेरा बैग देना, बैग में पेपर होगा सामने देखिए, अगर शायद होना चाहिए, आराम से एकदम एकदम आराम से, कई बार जल्दी में खुलता नहीं चीज़, ये नहीं करो एक और पेपर होगा, फोल्ड हो गए, सामने में होगा, सर सामने होगा, फ्रंट जेब में, फ्रंट जेब में। इसमें ये जो है वो, उसमें आप लोग जो आरती करते हो ना, तो कितने राउंड किसके लिए घुमाने और कौन सा मंत्र बोलना हो लिखा हुआ है, मैं आपको उसकी कॉपीज दे दूंगा, ये सबके लिए। ये कॉपी में ना 4 है, 4 लोगों को मिल रहा है, इसको फाड़ लीजिए और दे दीजिए। अभी है लेकिन सबके पास नहीं होगा, सब घर में गड़बड़ कर रहे होंगे। इसकी एक में 4 कॉपीज है, ठीक है, तो आपस में फाड़ लीजिए। ये ले लो सरोज परिवार, पीछे कर दो, पीछे बलेश्वर को दे दो, बांट दो। एक ही शीट में 4 है, ले लीजिए और ले लीजिए, हो गया। और चाहिए, और चाहिए, और ले लीजिए। सो 4 है, 4 लोगों को मिल रहा है, पीछे बढ़ा दीजिए, पीछे माता जी को गया। सबको मिल गया। सोचा चाहिए सबको, किसी को चाहिए तो और ले सकते हैं। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है भगवान की आरती के प्लेट में ना, इसमें लेफ्ट साइड में जो लिखा उपचार लिखा है, जो लिस्ट उसमें देखिए बिल्कुल देखिए, लिस्ट में लिखा उपचार, उपचार लिखा है शंख प्रारंभ। शंख का प्रारंभ करते हैं, जब शंख बोल बजाते हैं ना, जब आचमन कर लिया आपने, आप शंख हो जाएंगे। ध्यान रखिए पुजारी हैं, सेवा करते हैं, क्योंकि गड़बड़ बहुत करते हैं, इस विधि का पालन करें। शंख बजाएंगे तो इसमें 25 मिनट के साथ सबसे एक्सट्रीम लाइट राइट कॉलम में देखिए लिखा है 25 मिनट नीचे, मिनट सबसे लिखा है 25 नीचे में। तो मंदिर में 25 मिनट की आरती होती है, 4:30 से 4:55 तक, 4:30 से 4:55 तक होती है 25 मिनट की। तो ये बाइफिकेशन है, यहाँ का हमने 20 मिनट बनाया ना, तो शायद 2 मिनट पहले बंद हो गया था आरती, आरती 2 मिनट पहले ख़त्म हो गया था। कोई कोई बहुत देर तक करता है आरती, कोई 25 मिनट तक करता है यहाँ पे। तो इसलिए मैंने बोला था एक छोटी टेबल घड़ी यहाँ होना, जिस समय में जिसको देखे हो कितना मिनट बाकी है, उस हिसाब से अपने आप को बांटें, आरतियों को बांटें। क्योंकि कभी हो सकता है वो जल्द किसी चीज़ को जल्दी घुमा दिया हो, समय बच गया है। क्योंकि देखिए वर्शिप का मतलब होता है पंक्चुअलिटी, प्रभुपाद जी ने बोला पंक्चुअलिटी एंड क्लीननेस, स्वच्छता और समय, ये दोनों का पालन नहीं हो रहा है तो आप डीटी वर्शिप नहीं कर रहे हो, ठीक है। जैसे आपके फोटो के पीछे वाला भाग साफ नहीं, आप सामने से साफ कर दे रहे हो, पीछे वाला भाग साफ नहीं है तो डीटी वर्शिप नहीं कर रहे हो, समझ रहे बात को। पूरा जैसे आप लोग फोटो की क्लीन कर रहे हैं, टेबल भी क्लीन नहीं कर रहे हैं, ड्रॉर भी क्लीन नहीं हुआ, ड्रॉर कितने महीने पहले क्लीन हुआ था, कब क्लीन हुआ था ड्रॉर, 6-7 महीने पहले, 6 साल पहले कीर्तन वाले वाले थे। अच्छा कम से कम उसको 6-7 दिन के अंदर, 7 दिन में एक बार क्लीन होना चाहिए, भगवान की वस्तुएं रख रहे हैं उसमें ना। कटोरे सराय में भी ठीक से क्लीन नहीं करता हूँ तो उसमें क्या होता है, छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं वो, क्या अगर अगरबत्ती में कपड़ों में स्पर्श करते हैं, भगवान की वस्तु है उस पर कॉकरोच, और भगवान को ऑफर कर रहे हैं भगवान आपके लिए कॉकरोच फ्राई। अच्छा नहीं, ठीक है। तो शंख बजाइए, शंख को धो लेना चाहिए, शंख के अंदर भी कीड़े घुस जाते हैं कभी कभी, आप फूकते समय पता चला शंख। आपको यहाँ 2 मिनट नहीं मिलेगा, 1 मिनट बजा लीजिए, शंख 2 मिनट क्यों लिखा और नीचे में शंख समाप्ति 1 मिनट लिखा है, देखिए ध्यान से है ना। शंख इस बजाने में लग रहा है, पहले लोग दरवाजा भी खोलते हैं, पर्दा खोलते हैं, बहुत सारी चीजें होती है ना, तो उनको 2 मिनट लग जाता है, लेकिन हमको तो नहीं लगता, हमारा सब कुछ रहता है, फिर भी पर्दा खोलना पर्दा बंद कर इक्वल। फिर अगरबत्ती, अगरबत्ती को जब जलाते हैं तो अगरबत्ती को कई लोग जलाते हैं कैसे मालूम, ऐसे अगरबत्ती ऐसे रहेगा और ऐसे जलाते हैं, कभी नहीं जलेगा, बहुत समय लगा अगरबत्ती को ऐसे जलाइए, इसी की ये सब एक कॉमन नहीं, आप बहुत समय लेते हैं ऐसे ऐसे जलाइए अगरबत्ती को, जल्दी जलेगा क्योंकि अग्नि जब जलती है ऑक्सीजन जो होता है ऊपर की वो जलता रहता है, तो जब आप अगरबत्ती ऐसे लगाएंगे तो पूरा फ्लेम उसको मिलेगा जलने के लिए। ये समय बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको सिर्फ अगरबत्ती और दीपक जलाने में समय वेस्ट कर रहे हैं तो भगवान को क्या ऑफर करेंगे उस पर 20 मिनट में, है ना। पता चला आप बत्ती जलाते इतना समय हो गया, भगवान को जल्दी जल सके, है ना। अगर आपका प्रिपरेशन में इतना समय लग गया, आपने घर में किसी मेहमान को बुलाया है और 4 घंटे तक प्रिपरेशन किया, मेहमान भूख से मर गया, उसको उठा रहे उठो खाइए, मर गया क्या खाया। एक गुरु एक किसी शिष्य के घर गए थे, माता जी ने कम से कम 56 भोग बनाया, 56 भोग बनाया, और जब उसको भोग लगाने गई तो गुरु चले गए, बोले मेरे फ्लाइट में जा रहा हूँ। बोले गुरु तो प्लीज रुकिए, मैंने तो मेहनत से बनाया। बोले सब ठीक है, लेकिन आपने मुझे खाने के लिए बनाया हो तो समय समय पर मुझे परोस देना चाहिए, मैं जा रहा हूँ। गुरुदेव खाया नहीं तो क्या बना, मतलब बनाने का, ठीक है। ये सब सीखना चाहिए, छोटी छोटी चीज़ें। तो जब हम अगरबत्ती हो गया, घी का दीपक, मैं बता रहा हूँ विधि तैयारी करने की, ठीक है, पहले उसके बाद बताऊँगा कैसे ऑफरिंग करना। घी का दीपक, घी का दीपक को गर्म, घी को गर्म कर लेना चाहिए, हमेशा स्टील के बर्तन में होना चाहिए घी, घी का डब्बा इतना बड़ा, आधा किलो किलो का, और उसमें बाती, आप तैयार बाती आते हैं तो यूज़ कीजिए, क्योंकि इतना ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिस नहीं है, तो बाती का पैकेट खरीद लीजिए। घी को घर में गर्म कर लीजिए, उसमें कपूर का इतना बड़ा टुकड़ा आता है, इतना बड़ा स्लाइस आती है पूरी, मार्केट से मिलेगा आपको, वो कपूर नहीं जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो नहीं, उसमें मुँह में डाल लीजिए, कपूर का इतना बड़ा टुकड़ा होता है, वो पूरा प्योर कपूर होता है, उसको लाइए कूट दीजिए, आधा कपूर उस घी में मिला दीजिए चूरा करके, ठीक है, उसको गर्म कर दिया ना आपने, और उसमें दीपक डाल दीजिए। घी मान लीजिए आपका इस गिलास में घी इतना है, तो दीपक थोड़ा सा नीचे होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर नीचे होना चाहिए दीपक भरा हुआ। आप जब भी जलाएंगे ना ऐसे जलेगा, चुटकी में जलेगा जलाएंगे ना, क्योंकि कपूर मिक्स है उसमें, ठीक है। तो दीपक को निकाल के इजीली रख सकते हैं, गर्म कर देना है, बार बार आपको गर्म करने की जरूरत नहीं है हीटर में, कॉमन सेंस बता रहा हूँ, कॉमन सेंस प्रयोग करेंगे सेवा अच्छे से होगी, ठीक है। अगर मान लीजिए हो भी जाता है, आप स्टील के बर्तन को इस ब्लोअर के सामने रखते हैं तो गर्म हो जाएगा अपने आप, ठंड में ऐसा होता है, ठंड में वक्त करते उसके सामने यहाँ भी रखते हैं कई वक्त, और उस बड़े कपूर को लेकर आते हैं, एक छोटे से डब्बे में कूट कर रख दीजिए। आप लोग बोलते हो ना, कई लोग यहाँ बोलते हैं प्रभु जी वो पसीज जाता है, ना ना पसीजता नहीं है, अगर आप ढक्कन हमेशा बंद रखें, वहाँ पर टाइट ढक्कन जाएंगे कटोरे सराय में रखते हैं हम, और उसको क्या जब दीपक रखा रख देते हैं, पंच बाती जो रहती है उसमें दीपक में, पंच दीपक रख देते हैं, उसका चुटकी से पकड़ के सब टच कर दीजिए। आप जलाएंगे ना सर, स्पर्श करेंगे जलाएगा, नहीं तो आपकी 3 बार माचिस तीली, 4 बार माचिस की तीली जलाते हैं, जिसमें से कार्बन जलता है ना उसकी स्मेल जो आती है वातावरण में फैलती है, अच्छा नहीं है। एक माचिस की तीली में सब जल रहा है, टच कर देंगे बस, समय बहुत बचता है, ठीक है। तो याद रखिए दीपक को तैयार करने के लिए, हाँ आधा किलो घी में तो आप 100 ग्राम मिलाएंगे बहुत है, 100 ग्राम भी नहीं, 50-60 ग्राम मिला देंगे बहुत, मतलब ऐसा ना कि एकदम दरदरा ना हो जाए, पर चलो सिर्फ वो कपूर ही कपूर दिख रहा है, तो कपूर हो गया पूरा, वो नहीं करना। हाँ लगाना चाहिए जल्दी करने के लिए, तो जैसे कि एक्चुअली क्या होता है आजकल घी में या बाती में क्या होता है, मिलावट होती है, पानी होता है घी में, कभी कभी पानी की मात्रा होती है या कुछ शुद्ध चीज नहीं होता है, तो उसको जब हम लोग उसमें डाल लेंगे ना तो कपूर सहायता करता है जलने में, और दीपक को पूरा जलना चाहिए। जब भी कभी देखते हैं दीपक हम जलाते हैं तो दीपक जल गया, घी भी जल गया और बाती बची है, तो बाती भी पूरा जल जाना चाहिए, इसलिए घी मिला जाता है। उसके बाद आता है अर्घ्य, अर्घ्य जो होता है शंख होता है, शंख जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक लक्ष्मी शंख होता है, एक विष्णु शंख होता है। लक्ष्मी शंख जो होता है हम लोग भगवान को ऑफर करने के लिए करते हैं, उसमें उसे बजा नहीं सकते, उसमें छेद नहीं होता है, वो दाहिने साइड खुला होता है, आप देखते हैं दोनों विपरीत होगा, एक एक दाहिना होगा तो एक बायां होगा, ठीक है। अब चक्की बजाने वाले का दिशा अलग होता है और ऑफर करने वाला अलग होता है। अर्घ का जो पानी है ना वो शंख में पहले से नहीं डालना चाहिए, हमेशा याद रखो, जो शंख के लिए शंख का ऑफर करने के बाद एक छोटा सा लोटा रहता है ना, उसमें पहले से रहना चाहिए, उसमें फूल रहना चाहिए। तो जब हम लोग ये सब वस्तुओं को रखते हैं तो जल को रखते हैं, वो जल भी वैसी पवित्र होना चाहिए, उसमें गंगे चो यमुने बोला होना चाहिए, उसमें पुष्प होना चाहिए, बिना पुष्प के जल भी प्रयोग नहीं किया, ठीक है। तो आप जब आप ऑफर करने जाओगे ना तो तब उस छोटे से जल से, छोटे से बर्तन से शंख में जाना, नहीं तो क्या पहले से रखते हैं तो गिर जाता है, पूरी थाली गीली हो जाएगी क्योंकि बैलेंस हो जाता है। ठीक है, तो अर्घ्य की तैयारी ऐसे होगी। वस्त्रम, जो आपका रुमाल है, रुमाल कम से कम नहीं नहीं में तो कम से 20-22 होना चाहिए, क्यों, जो साइकिल आपका 21 होना चाहिए। जो आप ऑफरिंग करते हैं तो क्या कीजिए, एक डब्बे में रखिए, उसको लिखिए ऊपर में सूची, मार्कर से लिखिए सूची, एक डब्बे में लिखिए मुची, मुची का मतलब उपयोग हो चुका है, या उच्चिष्ट, और एक को लिखिए भोग। रुमाल को जब आप प्रेस करके अच्छे से धोकर उसको रखते हैं, ठीक है, तो उसके बाद जब प्रयोग होने के बाद दूसरे डब्बे में रख दीजिए, एक प्रयोग वाला अलग रखना चाहिए, नहीं तो गलती से प्रयोग वाला दूसरे दिन फिर प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, बता रहा हूँ, अपने घरों में भी ये कर सकते हैं। तो इस रुमाल को तैयारी करना है, रुमाल की इस प्रकार तैयारी करना है। पुष्प, फूल जो होता है वो एक प्लेट में रखना चाहिए। पुष्प आपके पास पूरा पैकेट आता है तो अच्छे फूल को चुनकर भगवान को ऑफर करना चाहिए, सजाने के लिए अलग फूल। भगवान को ऑफर कर रहे हैं मतलब भगवान को सुहाने जा रहे हैं, तो सुगंधित होना चाहिए, अच्छे फूल होना चाहिए। अब ध्यान से जब रखें तो देखिए उसमें कीड़े तो नहीं है, भाग कुचला हुआ तो नहीं, चेक करना चाहिए फूल को, फूल का प्लेट को। और मान लीजिए उसमें कुछ पीले हैं, कुछ लाल हैं, कुछ डार्क कलर के हैं, तो उसको उसके हिसाब से सजाना भी चाहिए। मान लीजिए चार है तो चार कोने में रख दीजिए, समझ रहे हैं। लेकिन कॉन्शियस है, जब किसी आपके घर में कोई मेहमान आता है, आप खीरा को काट के कैसे देते हैं कि कुचल दिए बेलन से, बोल लो खीरा खाओ, दे सकते हैं नहीं, उसकी विधि होती है, हम उसको क्या करते, काटते हैं। काटने का तरीका होता है, एक तो छील दिया, सिंपल लंबा लंबा काट दिया, ये उतना शोभनीय नहीं है। ठीक है, तो उसको स्लाइस में काट दिया राउंड से, वो भी उतना शोभनीय नहीं है। लेकिन जैसे ही आप जो आपका जो छीलने वाला पिलर रहता है, पिलर का एक नुकीला भाग होता है, ठीक है, कांटेदार, उससे एक बार छील दीजिए, छीले हुए को, तो उसमें ना लाइंस बन जाएंगे। आप उसको काटेंगे ना तो दानेदार दिखेंगे, लाइन करके देखिए। और उसको कैसे काटिए, तिरछा तिरछा काटा तो लंबे दिखेंगे। और उसको स्लाइड को, सलाद को सजा दीजिए, तो खाने वाला व्यक्ति उसको लगेगा कि नहीं करता। वैसे भगवान को परोसने का ढंग होता है, एक बात की ऐसे गिरी हुई है, एक बात की ऐसे गिरी हुई है, उसको जला दिया उसने, आग लगा दी उसमें, तो ये लगता नहीं कि प्रेम, ऐसा लगता है कि चलो फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। भगवान फॉर्मेलिटी नहीं चाहिए, ऐसा कुछ नहीं चाहिए भगवान के साथ, दीपक वीपक रुमाल फूल, भगवान के धाम में इतने सारे फूल हैं, इतने सुगंधित फूल हैं, पूछो मत। इस गेंदे को तो करोड़ों साल तक भी सूंघोगे तो खुशबू नहीं आएगी, गेंदा ही नहीं है, गंदा है, गंदा नाम दे देना चाहिए फूल का, क्योंकि हमारे पास यही है दिल्ली में, क्या करें। पुराने जमाने बताते थे फूल गोभी को फूल क्यों कहते थे, गोभी को, उसमें सुगंध आता था, जो बुजुर्ग को जानते हैं पुराने जमाने में गोभी से सुगंध आता था, उस खेत में जब जाते थे सुगंध आता था, इसलिए फूल भूले, तो फूल से फूल मतलब सुगंध होना चाहिए, है ना। पर वो गोभी अब बदबू आती है क्योंकि उसमें पानी अच्छा नहीं है, उर्वरा शक्ति खराब होगी जमीन की, उसमें केमिकल डाले जा रहे हैं, वैसे फूल में हो गया, फूल अब सुगंध नहीं देते। गेंदे का फूल बताते हैं मेरी गोल्ड, अब मेरी गोल्ड का अगरबत्ती आता है, आता है मेरी गोल्ड का अगरबत्ती, मेरी गोल्ड का अगरबत्ती आता है, मेरी गोल्ड का सेंट आ सकता है, पर फूल से सुगंध क्यों नहीं आ रहा है, का मतलब वो मेरी गोल्ड है नहीं, जो सुगंध भी है वो अगरबत्ती भी, फूल अब सुगंधित नहीं आते। आप गाँव में जाएंगे जो घरों में, आप घर में कभी मेरी गोल्ड उगाई है उसको देखना, खुशबू आएगा, है ना, अलग अच्छी खुशबू होती है। तो पुष्प को भी सजा कर पूरे अच्छे ढंग से, अगर पुष्प में तुलसी का पत्ता या मंजरी डाल देते हैं तो भगवान उससे बहुत संतुष्ट होते हैं। एक मंजरी, एक टुकड़ा मंजरी समझते हैं, तुलसी जी की जो होती है मंजरी, उसको तोड़ लीजिए, 7, 9, 11 अगर मंजरी डालते हैं भगवान, आपने कोई पूजा के द्वारा ये तो सब क्षमा करके खुश हो जाते हैं तुलसी से। तुलसी मंजरी भगवान को बहुत प्रिय है, तो आप क्या कीजिए, उसको एक मंजरी तो रख ही सकते हैं प्रतिदिन, नहीं तो तुलसी का पत्ता रखिए, फूल को तुलसी के पत्ते के साथ अगर करना चाहिए, ऐसे बताया जाता है भगवान। ठीक है, तुलसी के ऊपर होता है ना मंजरी, बीज होती है, दाने दाने होते हैं, कभी देखने के यहाँ भी होगा शायद, थोड़े छोटे छोटे बने होंगे शायद, नहीं है। तो ये पुष्प को तैयार करने का तरीका है, प्लेट साफ सुथरा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, बहुत बड़ा रहेगा तो कम फूल रहेंगे तो खाली खाली। चामर, चामर जो होते हैं कम से कम 2-3 महीने में धोना चाहिए उसको, साबुन से स्वच्छ करके धो के अच्छे पानी में अच्छे बकेट में धोना चाहिए और उसको धूप में सुखाना, उसकी चमक बनी रहती है, धीरे धीरे काला हो जाता है। ठीक है, उसका जो पकड़ने वाला हैंडल रहता है, हैंडल को भी साफ करना चाहिए। हैंडल को साफ करने के 2 तरीके हैं, एक तो इमली के पानी से साफ कीजिए, आता है क्या बोलते हैं पीताम्बरी, पीताम्बरी से साफ कीजिए तो साफ होना चाहिए। फिर मोरपंख, मोरपंख किसी कारण से टूट रहा है तो क्विक फिक्स से फेविकोल से उसको चिपकाइए, टूटे में से मत करिए और टूटता रहता है। ठीक है, उसके हैंडल है, उसके हैंडल में एक रिबन लगा होता है, उस रिबन को भी चेंज कर सकते हैं 1 महीने में 2 महीने में 4 महीने में, जब लगता है पुराना दिख रहा है। ठीक है, तो उसको बार बार पकड़ के गंदा हो जाता है, तो ये तैयारी है। ठीक है, अब देखिए हम उसको आरती का प्लेट हमारे पास आ गया, हमने आचमन कर लिया है इसको, अब उसको क्या कीजिए, अपने हाथ में जल लीजिए और पुजारी का काम है, ओम अस्त्राय फट छिड़क दिया उसमें, सब हो गया। फिर मुद्राएं होती है, 4 मुद्राएं होती है, मुद्रा को सीखने की जरूरत नहीं है, घरों में होता है, जैसे कुछ सरल मुद्राएं होती है, इसको चक्र मुद्रा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चक्र ऐसे करते हैं, यानी देख रहे हाथ मेरे, अगर उंगलियों को ध्यान दें, मेरे हाथ को ध्यान न सिर्फ हथेलियों को, तो चक्र के समान है ना, दाने खाते बने हुए हैं, ऐसे करके जिस वस्तु पर करना उसे 3 बार घुमाए, ये मुद्रा होती है। ठीक है, फिर उसको गालिनी मुद्रा होती है, अगर मैं बता दे रहा हूँ आपको जरूरत नहीं इतना सीखने की, गालिनी मुद्रा ऐसे करें, सीधा हाथ ऊपर की ओर, गालिनी मुद्रा, फिर धेनु मुद्रा होती है, धेनु मुद्रा को ऐसे घुमाए, ये भी बहुत मुश्किल है करना सबको, मतलब ये नीचे करके ना, ये अनामिका खोने वाली उंगली इसको घुमाना करना, देखो मुद्रा कठिन है, जरूरी नहीं है करना, मैं जैसे बता रहा हूँ। फिर मत्स्य मुद्रा होती है, आपका उल्टा हाथ ऊपर होना चाहिए, सीधा हाथ नीचे, मछली करते ना, मछली जल की रानी है, बचपन में किया हमने, तो ऐसा कर दीजिए शेप। ठीक है, और ऐसे से उंगली लाते हुए ऐसे से 3 बार करते, मत्स्य मुद्रा कहा गया। 4 मुद्राओं से क्या होता है, अलग अलग सुरक्षा प्रदान करते हैं। जैसे आपने आचमन कर लिया, फूल रख दिया, अब एक मक्खी आके बैठ गई, आपने इतना शुद्ध कर लिया, मक्खी बैठ, मक्खी गंदगी से बैठ गई, कूड़ा से, पासी में कूड़ादान है, वहाँ से आके बैठ गई तो शुद्ध हो गया, तो उसको बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन मुद्राओं का प्रयोग करके हम कवच का कार्य करते हैं। तो जल के लिए जो चक्र मुद्रा है, जल के लिए है, सॉरी सॉलिड के लिए, सॉलिड चीज़ों के लिए, जो फूल, भोजन है ना, चपाती, चावल, ये क्या है जो सॉलिड है, मतलब जल से युक्त नहीं है, उसको सुरक्षा प्रदान करता है। गालिनी मुद्रा जो क्या करता है, जल का, जल से युक्त, जैसे जूस, ग्लास पानी है ना, कोई जंक का जल, ये सब चीज़ों को, दाल, ये सबको क्या करता है, शुद्ध करता है, इसमें से अशुद्धता को निकाल लेता है। धेनु मुद्रा क्या करता है, पवित्र करता है, अमृत बना देता है। और मत्स्य मुद्रा क्या करता है, एक ढक्कन का कार्य करता है, कवच का, ताकि कोई भी वस्तु उस पर बैठ रही है, वास्तव में उस वस्तु पर नहीं बैठती है, वो कवच पर बैठती है। जैसे आपने मुद्राएं कर ली है तो मक्खी आगे बैठेगी तो कहाँ बैठेगी, कवच पर, फूल पर नहीं बैठेगी, और दिखने में लग रहा है क्योंकि आपने मंत्रों का कवच, या मंत्र भी बोले जाते हैं, पर गायत्री दीक्षा जो होता है, ब्राह्मण दीक्षा, उनको मंत्र दिए जाते हैं। देखिए मैं ये सब प्रैक्टिसली करने बोल रहा हूँ, आगे जाके ये करना है, जिसकी प्रैक्टिस अभी से करेंगे तो अच्छा है, सरल हो जाएगा जीवन। शुरू से जैसे बचपन में हम बच्चों को लोड लगता है टेबल है ना, ABCD पढ़ने में, नहीं जब बड़ा हो जाता है तो ABCD को सोचा नहीं, गियर लगाना गाड़ी में शुरू में बड़ा कष्ट होता है, जब सीख जाते हैं तो फोन में बात करते रहते हैं, आप आपस में बात करते, गाड़ी चला रहे, कब गियर लगा रहे हैं, कब एक्सीलेटर दबा रहे हैं, पता नहीं चलता, तो शुरू में सब कठिन लगेगा लेकिन आवश्यक है। ठीक है, अब आपने उसको मुद्राएं भी कर ली, सब कुछ कवच कर लिया, अब आपको ऑफर करना है, तो सबसे पहले क्या ऑफर करते हैं, अगरबत्ती। ठीक है, अगरबत्ती को ऑफर आपने जलाया, कई जगह में देखा जाता है कई अगरबत्तियाँ जो होती हैं जल्दी नहीं जल्दी, तो मैंने कोई तरीका बताया था अगरबत्ती कैसे करें, जलाएं। दूसरा तरीका है कि अगरबत्ती के सामने वाले भाग में कपूर लगा दें, कपूर को छुटके उठाएं, लगा के रखें, ऐसे देखना मंदिर में करते हैं, मंदिर के ऑल्टर में जाएंगे, ऑल्टर में देखेंगे प्लेट को या प्रभुपाद जी का जो रहता है उसके सामने कपूर लगा होता, तीनों तीनों अगरबत्तियों, ऐसे कपूर उठाए चुटकी चिपका दें। घी से भी कर सकते हैं, कपूर अच्छा है, कपूर जल्दी जलता है। जैसे आप घी में आग लगाएंगे ना तो वो फैलने लगता है, पूरे अगरबत्ती में जलने लगता है। अब जब अगरबत्ती में आग लग गई तो बुझना मुश्किल होता है, ठीक है। तो घी तेजी से नीचे जल जाएगा, पूरा अगरबत्ती जल्दी जल के कपड़ों में किसी चीज़ में गिर सकता है। अगर थोड़ा सा ऊपर सामने भाग में अगर लगा देंगे तो अगरबत्ती तुरंत जल जाती है कपड़ों। अगर लगता है कई अगरबत्तियाँ सूखी होती है, बहुत ड्राइनेस होता है उसमें, बहुत समय लगता है। जैसे पारिजात, पारिजात में ऑयल होता है, जैसे वृंदावन फ्लावर, बहुत समय लगता है जलने में। यहाँ पर वृंदावन फ्लावर आता है, वृंदावन फ्लावर लाएंगे उसमें काफ़ी समय लगता है, उसमें जलाना पड़ता है, ठीक है। अगरबत्ती को आपने क्या किया, आग लगा दी। अब अगरबत्ती को आचमन, ये तो हमारा आचमन था, ऐसे दो आचमन और होते हैं, आप ध्यान रखे रहते हैं, एक आचमन गुरु के लिए, एक कृष्ण के लिए। तो जो गुरु वाला है, गुरु से इसको धोएंगे, ठीक है, और अपने हाथ को भी धोएंगे। अपने हाथ का मतलब गुरु के हाथ को धुलवा रहे हैं वास्तव में। और उसके बाद क्या करेंगे, भगवान वाले आचमन से धोएंगे, फिर बचपन वाले से घंटी में ड्रॉप डालेंगे, ठीक है। क्लियर हो रहा है, अगर फास्ट चल रहा हूँ तो बताना। हमने एक आचमन कप उठाया, अगरबत्ती में डाला थोड़ा सा जल, एक घंटी में डाला, घंटी को उल्टे हाथ से पकड़ा, घंटी घंटी ला सकते हैं एक मिनट, घंटी को ना पहचानी है, घंटी को कितने लोगों ने घंटी को देखा है, देखा है घंटी के यहाँ पर ना गरुड़ जी हैं, कितने लोगों ने देखा है, गरुड़ जी हैं, गरुड़ जी ऐसा पकड़िए, या फिर इस उंगली को प्रयोग नहीं करना, ऐसा पकड़ लीजिए इसको, गरुड़ जी सामने रहना से इस तरीके, और कमर के नीचे नहीं, कमर से ऊपर ऊपर जाना चाहिए घंटे, कई लोग ऐसा पकड़ते हैं, गरुड़ जी की गर्दन दबा दी, ठीक है ऐसे पकड़ के। और जब आपको लगता है कि माइक में कीर्तन नहीं हो रहा है तो यहाँ पर उंगली रख दीजिए, ठीक है। और उसके बाद अगरबत्ती को घुमाइए, तो अगरबत्ती को घुमाने का तरीका है, लिखा हुआ है, भगवान का चरण कमर मुख सिर पूर्ण शरीर लिखा हुआ है यहाँ पर ना। तो आप जब अगरबत्ती को जलाते हैं, जैसे ही भगवान गुरु की तरफ करते हैं तीन बार, भगवान की तरफ से करते हैं, जैसे ही भगवान के पास ले जाते हैं तो बोलिए एष धूप, यहाँ लिखा हुआ है, क्या बोलेंगे, तब भगवान को पता चलेगा ये धूप दे रहा हूँ। जैसे किसी को बोलते हैं ना, ये जल लीजिए, ये जूस लीजिए, ये गुलाब जामुन लीजिए, सब बोलते हैं ना। अब ऐसे नहीं कि चुपचाप धीरे से रख के चले गए, अजीब लगता है, ये एक शिष्टाचार है ना, किसी को वस्तु प्रदान करते हैं तो बोलते हैं हमें कि ये प्रसाद लीजिए, ये जल लीजिए, ये आसन ग्रहण कीजिए, ये विधि है। तो ईशा धूप बोले, और क्या करना है, सीधा शरीर में सात बार, पूरे शरीर में लिखा है ना, सात बार पूरे शरीर में, बॉडी में कहीं नहीं, चरण वरण कहीं नहीं, सीधा शरीर में डायरेक्ट। फिर जब घी का दीपक आता है, ईश्वर दीपक बोलेंगे, और चरण में चार बार, ठीक है, कमर में दो बार, इसमें गड़बड़ लिखा है, हाँ तीन बार करते हैं, और मुख पर तीन बार, सिर पर नहीं करना है, पूरे शरीर में, मुख हो गया ना, पूरे शरीर में सात बार, ये गलत लिखा है इसमें, हाँ दो लिखा है ना, दो को चेंज कर दीजिए, तीन, हाँ तीन चार होता ना, चार तीन होता है, चार दो तीन ही है, ठीक है। अंतिम में पूरे शरीर को सात बार, किसमें ज्यादा समय लगता है, तो पुजारी समय से कर नहीं रहा ये पता चल जाता है, चेक करना उसमें क्या लिखा है, चार दो तीन, चार दो तीन, ठीक है इसका मतलब, ठीक है, ठीक है। उसके बाद इसमें समय लगता है, यानी पुजारी आप देखिए, आप जब ऑफर करते हो तो कहाँ गड़बड़ होता है, पहले गुरु को, फिर प्रभुपाद, उसके बाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, इसको तीन तीन बार करते हुए जाना है, तीन बार प्रभुपाद को किधर, गुरु महाराज को किया, फिर उसके प्रभुपाद को भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, फिर कौन है, गौर किशोर दास बाबू जी महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर, फिर जगन्नाथ दास बाबू जी महाराज, फिर षट गोस्वामी भी एक साथ तीन बार, फिर उसके बाद किसको करोगे, पंचतत्व तीन बार। देखिए आप करते हैं, दर्शन खोलिए, एक मिनट दर्शन खोलिए, यहाँ है ना विग्रह, आप देख के समझ, यहाँ पर अच्छा कम है, ज्यादा रखते हैं बहुत दिक्कत होता है। पहले अब तक पांच हमारे आचार्य हैं, बहुत प्रमुख आचार्य हैं हमारे, प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, गौर किशोर दास बाबू जी महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर और जगन्नाथ दास बाबू जी महाराज, फिर पूरे षट गोस्वामी के एक साथ तीन, जाते समय ऊपर से जा रहे हैं भगवान को ऑफर करने के लिए भी, ठीक है तीन, फिर पंचतत्व को तीन तीन करना, फिर आप कीजिए नरसिंह भगवान को तीन, फिर राधारानी को तीन, हाँ तुलसी जी है, तुलसी जी को करना है, लेकिन तुलसी जी को करना है एक्चुअली ऑल्टर में तुलसी का फोटो भी नहीं है ना, एनीवे बाहर में भी चलेंगे, तो आपको षट गोस्वामी के बाद करना है, षट गोस्वामी को तुलसी को तीन बार, पंचतत्व तीन बार, नरसिंह भगवान तीन बार, राधा रानी तीन बार, अब कृष्ण में आएंगे, अब कृष्ण के चरणों में चार बार, कमर में दो बार, मुख पर तीन बार, पूरे शरीर में सात बार, उसके बाद आप वापस भी आएंगे तो वैसे आएंगे जैसे गए थे आप, तो भगवान राधा रानी को कितने बार करेंगे, तीन बार पूरे शरीर पर, क्योंकि प्रसाद बन चुका है, तीन बार फिर नरसिंह भगवान को, तीन बार पंचतत्व, ठीक है, तीन बार तुलसी बनाने को, तीन बार षट गोस्वामी को, फिर तीन तीन बार इनको करना है, बाकी गुरु परंपरा को, ठीक है। आपके पास समय नहीं है, आपको लगा लेट हो रहा है, कैलकुलेशन होना चाहिए, तो आप पूरे को एक साथ भी तीन बार कर सकते हैं, फिर गुरु महाराज को तीन बार, फिर प्रभुपाद जी को तीन बार, प्रभुपाद जी वास्तव में सबको करते हैं तीन बार, ठीक है, ये विधि याद रखिए। तो हम लोग तीन तीन बार करके जा रहे हैं, लेकिन भगवान को जो ये भगवान के लिए आरती लिखी है, ये जो लिखा है ना ऑफरिंग भगवान के लिए लिखा है, पर जाते समय आते समय तीन तीन बार बाकी सबको करना, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। फिर आते हैं अर्घ्यम, जो शंख में जल रहता है, इदम अर्घ्यम, तो क्या बोला, इदम अर्घ्यम, कहाँ बोलना मैंने बताया था, जब भगवान के पास पहुंचते हो, भगवान को प्रकट कर रहे हो ना, ये सब तो के माध्यम से कर रहे हो, तो भगवान के पास जैसे ले गए, बोला इदम अर्घ्यम समर्पयामि, वो मंत्र लग रहा था, इदम अर्घ्यम बोल सकते हो, तो कि वो क्या करते हैं, तीन बार सिर पर, तीन बार सिर पर, वास्तव में लोग सोचते हैं कि शंख, जब भगवान को शंख से जल से क्या करते हैं, नहलाते हैं, पर वास्तव में नहलाते नहीं है, ये गलत है, शास्त्र पढ़ेंगे तो बताएगा नहलाते नहीं है, भगवान को सुबह अभिषेक करा चुके होते हैं जब उठाते हैं, तो ये वास्तव में क्या होता है, जैसे घर में कोई व्यक्ति आता है उसको जल छिड़कते ना, ये वही है, और उसके वस्त्र देते हैं, अंग वस्त्र, कोई व्यक्ति आता है उसको वस्त्र देते हैं, धोती कुछ देते हैं शरीर में, तो ये वस्त्र और ये जल वो है, ऐसे नहीं कि नहला के पूछते हैं, गलत है, ऑलरेडी हो चुका है भगवान को, सुबह 3:30 बजे कार्यक्रम हो चुका होता है, भगवान को उठाते हैं, भगवान को प्रार्थना करते हैं, भगवान उठिए, दंत सबके मंत्र हैं, उठाते हैं, फिर उनके ड्रेस बनाते हैं, नहलाते हैं, चरणों को धोते हैं, शरीर को धोते हैं, अभिषेक करते हैं, पूछते हैं, फिर भगवान को तिलक लगाते हैं, भगवान को जनेऊ पहनाते हैं, फिर वस्त्र बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं, सजाते हैं, फिर लेकर आते हैं, तो हम लोग जो सुबह मंगल आरती 4:30 बजे देखते हैं ना, 3:30 से 1 घंटा पहले कार्यक्रम चलता रहता है, भगवान को बाल्य भोग लगाते हैं, मतलब मीठा जो पेड़ा बनता है ना, भगवान को भोग लगाते हैं, रबड़ी पेड़ा, सुबह जैसे बच्चों को मीठा भी खिला के उठाते हैं ना, वैसे दूध नहीं देते, दूध हमेशा गर्म गर्म दूध मिलता है, रात को पिया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग भगवान को ऑफर कर रहे हैं, सारा चीज़ याद रखिए, इदम अर्घ्यम, इदम अर्घ्यम, अब तीन तीन करते हुए लेके सभी को आप पहुंचे किसके पास, कृष्ण के पास, कृष्ण के कहाँ पर, सिर पर, सिर पर करना, तो ऐसे नहीं कि एकदम सिर पर सिर करके कर रहे हैं, ऐसी जरूरत नहीं करनी है, आप मन से सोच के देखिए मैं सिर को कर रहा हूँ, पर आपको सिर की ओर देखना भी चाहिए ना, आप सिर की ओर देखिए और संग से कीजिए, तीन बार किए फिर सात बार शरीर में, सात बार घुमा लिए, आप इस जल को उसमें गिराइए थोड़ा सा, जो जल पात्र रहता है छोटा सा मटका उसमें गिराइए, उससे फिर राधा रानी को तीन बार पूरे शरीर में, फिर जल गिराइए, फिर नरसिंह भगवान को तीन बार जल गिराइए, फिर पंचतत्व को तीन बार फिर जल गिराइए, फिर तुलसी महारानी को तीन बार जल गिराइए, फिर इनको छठ गोस्वामी तीन बार जल गिराइए, फिर अगर आपके पास समय है तो सबको तीन तीन बार घुमाइए, तीन तीन बार को जल गिराइए, और समय नहीं है तो बरसत करके देखिए। समय के अनुसार चक्र को काम ज़्यादा भी कर सकते हैं आप, है ना। तो आप मंदिर में गए कभी, मंदिर में ध्यान से जो मेन पुजारी ऑल्टर रहता है वो करता है जो नियम, उसके नियम के अनुसार दोनों फॉलो करते हैं। उनके दोनों कमर में टीवी लगी हुई है छोटी CCTV, वो जब पूजा करते हो तो देखते रहते हैं कि मेन ड्यूटी मेन ऑल्टर वाला जो राधा पार्षादी ऑल्टर वाला आप क्या ऑफर कर रहा है। अगरबत्ती ऑफर कर रहा है तो चल कर देते हैं, अगरबत्ती उठाते हम ना करेंगे। दीपक कर रहा है तो दीपक हो गया उसका, देखते हो दीपक नीचे ले आया, अब गुरु महाराज को कर रहा है इसका मतलब खत्म होने वाला है, पब्लिक दिखाएगा तो अभी अगरबत्ती भी फास्ट होना शुरू कर दे ताकि मैचिंग हो, टाइम से खत्म हो। संघ एक साथ ही बसता है, दरवाजा एक साथ ही खुलता है, तो ये नियम होना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था, अर्घ्यम, अर्घ्यम अपने भगवान को दे दिया, फिर राधा रानी को सब कुछ करते हुए आया, सब कुछ डाला, पब्लिक को भी करते पूरा उसमें डाल दीजिए, फिर इसमें जो पुष्प था वो पुष्प उसमें डाल दीजिए। और पुष्प बांटने वाले जो जल बांटता है उसको ध्यान रखना चाहिए कि जल बांटते समय जमीन में नहीं गिरना चाहिए, वो भगवान का अर्पित जल है। तो हम जैसे एकदम ऐसे फेंकते हैं ना जब, तो ये अच्छा विधि नहीं है बताया गया शास्त्रों में। जल को क्या करना चाहिए, उसमें जल को छिड़कना चाहिए हल्का, छिड़को छिड़को, जमीन में नहीं गिरना चाहिए। जल को जमीन पर गिरा दिया अपवित्र हो जाएगा, मतलब अपराध लग जाता है, सेवा अपराध, यानी किसी की पवित्र वस्तु को आपने फेंक दिया प्रकार से, तो ऐसे करके हाथ में फेंकते ना वो भी ठीक नहीं है। वैसे कब फेंका जाता है, बहुत सारी भीड़ है आप फेंकोगे तो जमीन पर शायद ना गिरेगा, सब पर गिरेगा, लेकिन आप लोग संख्या में कम होते हैं तो इसलिए किसी सर पर जाइए और धीरे से जल डालिए। आप देखिए मंदिर में गुरु पूजा में कैसे डालते हैं, ऐसे जब डुबोएंगे ऐसे निकलेंगे और झाड़ेंगे पहले से, फिर किसी के सर पर जाएंगे ऐसे छिड़केंगे, देखेंगे दो बूंद गिर गया फिर आगे डालेंगे, जमीन में नहीं गिरने देते हैं, ठीक है। इसीलिए क्या जरूरी है, शंख में जल की मात्रा कम होना, ज़्यादा मात्रा होने से जो पार्टनर सोचता है जल फेंका जाएगा ना, आप जल को बचा के तुलसी में लास्ट में डाल सकते हैं, क्योंकि आपने जल से किसी को छुआ नहीं है, या उसको पी सकते हैं, पीजिए बहुत पवित्र चीज है, कई भक्त पीते हैं उसको, अपने गिलास में ले लीजिए, खुद नहीं गिलास में लेके पीना अलग से, ठीक है। नहीं तो बोले आपने बोला था रोज उसको मुँह लगा के पिए हैं। वस्त्रम इदम वस्त्रम, अब देखिए दो में एशदूप है एशदीप है, इसमें इदम इदम है, ठीक है, क्योंकि अगली वाली चीज़ों को एश बोलते हैं या ठोस वस्तुओं को। अर्घ्यम वस्त्रम, अब इदम वस्त्रम, इदम वस्त्रम क्या सीधा साथ पूरे शरीर में, तो वैसे ही जाएंगे तीन तीन करते हुए, कृष्ण के पास गए इदम वस्त्रम साधन कर लिया, ऐसे नहीं ऐसे पूछ रहे हैं, कई लोग सोचते हैं पूछना है ऐसे से, ये सब गलत विधि है। वस्त्र को शरीर पर दिया जाता है, जब जब जाएंगे बंगाल में विधि है कि अब जाएंगे तो आपको जल पर जल छिड़का जाता है, गंगा जल सर पर, और सर पर कपड़ा देते हैं, बैठोगे फिर आपके चरणों को धुलाते हैं, फिर आपकी आरती करते हैं, तो उस विधि के अनुसार किया जाता है, ठीक है, ये समझिए बात को। फिर उसके बाद आता पुष्प, एतानी पुष्पानी, अगर एक फूल अर्पण कर रहे हो एक ही कटोरी में एक ही फूल है तो बोलेंगे एश पुष्प, क्या बोलेंगे, हाँ अब बहुत सारा फूल है इसलिए बहुवचन एतानी पुष्पानी, ठीक है। कब करते हैं एश पुष्प, कब काम आता है, जब तुलसी आरती करते हैं, तुलसी आरती स्टार्ट करने के पहले गमले में एक फूल रखना चाहिए, एश पुष्प समर्पयामी, तुलसी जी को बिना पुष्प की आरती नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये तानी पुष्पानी सात बार तीन तीन करते हुए गए कृष्ण के पास, पूरे शरीर में सात बार किया, फिर राधा रानी को तीन बार, आप उसमें से दो पुष्प उठाइए कृष्ण के लिए, राधा रानी को रख लीजिए, ठीक है, फोल्डर में रख दीजिए। फिर नीचे आइए नरसिंह भगवान को पंचतत्व को तीन तीन बार किया, एक एक फूल रख दीजिए, तुलसी जी को प्रणाम किया, तुलसी जी रख लीजिए, फिर षड गोस्वामी और हमारे पांचों परंपरा जो उसको रख लिए, फिर दोनों में एक रख दिए, फिर प्रभुपाद जी को क्या गुरु महाराज को गुरु महाराज को रख दिए, फिर पब्लिक को कीजिए, फिर वो पुष्प दीजिए सुनने के लिए, जिसको ऑफर कर रहे हैं लेवल वाइज तीन स्तर स्तर है ना, तो जब पहला स्तर कंप्लीट हो जाएगा दोनों को ऑफर कर दिए, दूसरा स्तर होगा दोनों को ऑफर कर दिए, तुलसी जी को अलग क्योंकि तुलसी जी अलग है, तीसरा होगा तीसरा को, फिर गुरु को करते हैं प्रभुपाद को, गुरु को देना है, गुरु पूजा वैसे करना चाहिए, फूल बाद में रखना चाहिए फिर पब्लिक दिखाना चाहिए। ठीक है, गलतियां होगी याद तो होता है, फूल होता ही है, इतना तो होता है। नहीं नहीं, फूल होगा इतना फूल तो डाल सकते हो। नहीं नहीं ऐसे आप फूल ऑफर वक्त देंगे। नहीं जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, कर सकते हो, मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फूल थोड़ा ज्यादा रख लो, 9 फूल है, 10 रख लो। अच्छा किसी के फूल सूंघा तो बुरा मान जाएगा, एक फूल बचा रहेगा तो क्या दिक्कत है। 10 फूल रख लो, 9 ऑफर कर दो, प्लेट में एक बचा रहेगा। भगवान को ज्यादा इम्पोर्टेंट, एक फूल लाओ, प्रभुपाद दिखाओ सबको, सूंघा दो, ईजी है सूंघाना, ऐसे सूंघाओगे ऐसे सूंघा देना, क्या दिक्कत है। नहीं अब इतना क्या, 9 रखे हो तो 12 रख देना, 20 रख देना, ठीक है, बढ़िया से सजा देना। आप देखिए मंदिर में ऐसे सजा देते हैं लोग, ऐसा रहता गिरता भी नहीं है, और फूल कैसे घुमाते भी लोग, ये लोग गिरता नहीं है। तो सीधा साधा करना चाहिए, हाँ, वो ज़्यादा सब शोभाजी अच्छा नहीं। चामर, केश चामर, चामर किसको बोलते हैं, याक पशु होता है, उसका पूंछ होता है, गाय होती है वो भी एक प्रकार का, ये मतलब सबका नहीं होता। तो चामर को कई लोग ऐसे करते हैं, चामर को ऐसे लाते हैं और ऐसे कर देते हैं, चामर को ऐसे करना चाहिए। और चामर शरीर के पीछे नहीं आना चाहिए, पीछे जाते समय, ठीक है, चावर कर रहे हैं ऐसे करना चाहिए, पर ऐसे आकर रुकना नहीं चाहिए, ऐसे आकर रुकते हैं तो वो गिर जाता है ऐसे, कई बार लोग करते हैं यहाँ भी, करना चाहिए पूरा, पीछे जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, पीछे जान दो। चावर का पर्पस होता है एक तो हवा, दूसरे का पर्पस होता है उनको आनंद प्रदान करना, उनको सेवा जैसे लगना चाहिए। पता चला ऐसी कर दी उसके सिर के ऊपर, पूरा उसको बालों जैसे लटकता रहेगा भगवान के ऊपर। तीन तीन करते हुए जाइए, भगवान को भी कीजिए, समय के अनुसार कीजिए, इसमें कोई राउंड नहीं रहता है। मान लीजिए आपके पास समय मान लीजिए ज़्यादा है तो ज़्यादा देर तक भगवान कृष्ण को कर सकते हैं, फिर आइए तीन तीन करके वापस आ जाइए, ठीक है, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन। आप जल्दी है तो एक एक करके भी आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन भगवान को करना जरूरी, कम से कम 7 बार करना चाहिए भगवान को। उसके बाद मोरपंख को एश व्यंजन बोला गया, मैंने लिखा है एश व्यंजना, एश व्यंजन, व्यंजनों को ऑफर करेंगे चामर को, मोरपंख को। मोरपंख भी वैसी विधि है, शुद्ध कीजिए उसको हाथ से चल से, और उसे तीन तीन बार करके जाइए, भगवान कृष्ण को कीजिए 7 बार, फिर राधा रानी को 3 बार, पंचतत्व को 3-3 करके आएंगे, इतने में समय हो जाता है। आपको लगता है कि अच्छा बहुत चतुर होना चाहिए जो पूजा करने वाले को, ऐसा लगता है गाने वाला व्यक्ति अभी चामर हम पंख मोर पंख कर रहे हैं, पर गाने वाला व्यक्ति जो है अभी गा रहा है जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, तो आपका मतलब हरे कृष्ण मतलब 2-4 बार तो गाएगा ही गाएगा, तो थोड़ी देर और करना चाहिए उसको। नहीं नहीं, तो समय के साथ अनुसार गाया था, अगर मान लीजिए समय बिल्कुल एक बार गाएगा व्यक्ति, लेकिन बोल रहा हूँ ऐसा मान के चलना चाहिए उसको, ठीक है। कब उसको बंद कर देना चाहिए पता, जब उसको लगना चाहिए कि अब शायद गाया जा रहा है खत्म होने वाला है, जैसे ये राधा पार चढ़ती बोलना शुरू कर दिए, तो आप तो 3-3 बार करके लब ला सकते हो, है ना, समझ रहे बात को। आपने समय बहुत जरूरी, समय से करना है, न पहले न बाद में, हाँ। तो अगर आप सामने में घड़ी रहेगा तब, मैंने इसलिए बोला था एक घड़ी रखिए लाल वाली घड़ी, वो कहाँ है, फेंक दिए, एक घड़ी लगी जिसमें कि नंबर लिखे हों, ठीक है, वो नहीं, जो सिर्फ निशान बने रहते हैं या दाने दाने बने रहते हैं, या तो नंबर लिखा हो या इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, तो डिजिटल होता है, डिजिटल इज द बेस्ट, डिजिटल रखिए एक सेकंड का हिसाब किताब हो जाएगा, और सामने में लगा दीजिए तो बढ़ता बढ़ा ले आइए। आजकल डिजिटल आते हैं जो लाल कलर के होते हैं, विजिबल होते हैं, लेकिन डीडी वर्षिप में अगर आप समय का ध्यान नहीं रखते ना, तो फिर कोई लोग मैं देता हूँ 20 मिनट करते हैं, कोई 10 मिनट में संतुष्ट हो जाते हैं, कोई लोग कोई 12 मिनट कर रहे हैं, क्या है भगवान बोले क्या चक्कर क्या है, आज लंबा खींच दिया कल खत्म कर दिया, 25 मिनट का है। अब इसमें बाकी सब 2.5 मिनट के हैं, सिर्फ दीपक जो है वो 7 मिनट का है। अब इसमें कैलकुलेशन कर सकते हैं 20 मिनट के हिसाब से, है ना, 20 मिनट आपको करना है तो 5 मिनट आपको घटाने, ठीक है, उसके हिसाब से घटा लीजिएगा। उसके बाद अंतिम में जब आप भगवान को ऑफर कर दिया सब कुछ, अब आप प्रभुपाद गा रहे हैं, तो आप शंख उठाइए, शंख धोइए, शंख बजाइए। यहाँ शंख बजाने का बताया सुबह बजाते हैं तो धीरे बजाना चाहिए, कई बार भक्त लोग भूल जाते हैं, वो जोश में आकर तीन तीन बार जोर से बजाते हैं, बजाइए बजा रहे हैं एकदम, कि दिखाने के लिए मैं बहुत अच्छा बजाता हूँ ना। ये डिटी वर्शिप जो होता है भक्त और भगवान के लिए होता है, हमारे लिए कुछ नहीं होता, हम सेवक हैं। तो भक्त को या किसी सेंटर को किसी वजह से कष्ट आ सकता है कि ज़्यादा देर, कई लोग यहाँ सोते हैं वो गुस्सा करेंगे शंख बजाने से, धीरे बजाइए अगर मना किया गया तो, है ना। फिर उसके बाद अंतिम में प्रणाम कीजिए भगवान को, भगवान से क्षमा मांगिए, भगवान मैं इतना ज़्यादा योग्य नहीं हूँ आपकी सेवा करने के लिए, शायद मुझसे कोई त्रुटि हो गई होगी, तो आप कृपा क्षमा कीजिए, उससे भगवान को प्रणाम कीजिए। और प्रणाम करने के बाद उसके बाद उठिए, फिर से हाथ धोइए, और आपको क्या करना होगा, खुशबू गंध ऐसा गंध करके ऑफर कीजिए उसको। तो वही विधि है, तीन तीन बार करके जाइए भगवान को कीजिए, भगवान को शरीर पूरे सात बार, फिर राधा रानी को तीन बार करते आइए। राधा रानी को कर लेते हैं तो दोनों को सुखा दीजिए, फिर नीचे से पुष्प को करते हैं ना, पुष्प को जैसे करते हैं वैसे कीजिए, पहले लेवल पर कर लीजिए तो दोनों को लगा दीजिए, दूसरे लेवल पर आइए तो दोनों को लगा दीजिए, तुलसी को पत्ता टच कीजिए, हल्का सा स्पर्श कीजिए, हाँ कर सकते हो, क्योंकि तुलसी भी तो कर सकते, तने पर भी कर सकते। फिर नरसिंह आरती है, नरसिंह भगवान कीजिए, उसके बाद पंचतत्व कीजिए, फिर नीचे आइए उसको कीजिए, षड्गो स्वामी को नीचे कीजिए, उसके बाद प्रभुपाद दिखाइए, गुरु महाराज को दिखाइए, गुरु महाराज को समझाइए, फिर पब्लिक को दिखाइए, पब्लिक को दिखाकर उसको वापस कर दीजिए। ये विधि है ना, ऐसा नहीं कि आपने सबको ऑफर कर दिया फिर लास्ट में सबको छुआ रहे, अच्छा नहीं। कृष्ण और राधा रानी करेंगे तो फिर दिखाइए, अभी तो ऐसा लगता है कि आप उथल पर हैं, वो स्वर्ग में हैं, और ऐसे जंप करके ऐसा लगता है वॉलीबॉल का गेम चल रहा है कुछ, वैसे जाके छूता है ना, ऐसा गेम बहुत ऊँचा है, अभी कम करने का प्लान कर रहे हैं। पर मैंने बताया था यहाँ पे एक स्टूल रख सकते हैं, कुछ रख सकते हैं, है ना। फिर उसके बाद अंतिम में खड़े हो जाइए, भगवान को फिर से क्षमा मांगिए, गलती हुई होगी तो भगवान कृपया क्षमा कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आके बैठिए मत, वहाँ खड़े रहिए, अनाउंसमेंट के बाद पर्दा बंद करना पूजा की जिम्मेदारी है और किसी की नहीं, ठीक है, तुम्हारी किसी और की जिम्मेदारी नहीं है। जब बोलते हैं श्री आधा पार साथी की जय, श्री गौर निताय की, जब बोलते हैं तो पर्दा जब बंद करना जिम्मेदारी किसकी है, पुजारी की है। पुजारी का काम तब तक खत्म नहीं होता जब तक दर्शन बंद नहीं हो जाते हैं, उसके बाद भी कई मंदिरों में ऐसा होता है दर्शन बंद होने के बाद अंदर सफाई करते हैं वो लोग, कभी कभी ऐसा होता है अनाउंसमेंट चल रहा हो लोग टेबल साफ करते रहते हैं, पोछा लगाते रहते हैं, जल वल गिरा हुआ करना चाहिए, सामने देखिए कुछ कुछ चीज़ें गिरी हुई हैं, देख रहे हैं, तो ये अच्छा नहीं है। पुजारी का काम उसमें सफाई करें, कोई और का काम नहीं, हर बार पुजारी पहले आए, पुजारी का काम आरती का प्लेट सजाना, पुजारी का काम आरती का प्लेट वापस धोने वाले बर्तन में डालना, ये पुजारी की सेवा है, ये कृष्ण भगवान प्रभु की सेवा नहीं है, वो कर रहे हैं उनकी महानता है, ये पुजारी की सेवा है। 15 मिनट पहले आए, पूरे प्लेट को सजाएं और सेवा करें। माताएं भी ऐसा सोचती हैं, माताओं का तो और ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, माताएं पहले से आना चाहिए, माताओं का अपना प्लेट खुद सजाना चाहिए तुलसी आरती का, प्रभु जी को भी अपना तुलसी आरती का प्लेट खुद सजाना चाहिए, ये शिष्टाचार है। आप कोई भगवान की सेवा करने आए हैं, कोई आप बहुत बड़े सरपंच नहीं है, कोई चौधरी नहीं है कि आपको कोई प्लेट सजा कर देगा आप सेवा करेंगे, ठीक है। भगवान की सेवा के लिए विनम्रता होनी चाहिए, तो अपना आखिर खुद प्लेट बनाइए। जैसे हम घरों में रहते हैं, विनम्रता क्या है, प्रसाद हमारे लिए कोई परोसे का तो नहीं, हम सोचते हैं हम खुद ही परोस लिए, विनम्रता बोली गई ना घर में, मम्मी प्लेट निकालो, अरे सुनती हो प्लेट निकालो, ये जो है ये उसको बोलते हैं अहंकार की भाव। विनम्रता क्या है, खुद ही प्लेट अपना सजाना। पर कभी क्या होता है जब पंगत में बैठते हैं तो बोलते हैं आप बैठ जाइए हम दे रहे हैं, तो ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं कि कृष्ण भगवान पू आ रहे हैं सुबह तैयारी कर रहे हैं सब कुछ प्लेट सजा दिए जी आप बड़े आ रहे मस्त शंख बजाने के लिए, हाँ जी अब शंख बजाऊंगा मैं तो पवित्र हो गया, अब मैं गुरु हूँ, गुरु ये गुरु के लिए असिस्ट करते हैं, पर हमें तैयारी तो करनी पड़ेगी ना, गुरु आरती करेंगे पर तैयारी हम करते हैं, ये भावना होनी चाहिए।
शुरू करते तो लंबा थोड़ा सा उसके बाद पीला को कर देते तो वो ठीक
नहीं,
अलग अलग भक्ति ना करिए।
आपके घर में ये मंदिर में कहीं आपत्ति नहीं है तो तीनों बार लंबा लंबा कीजिए, लेकिन जहाँ जिस स्थान में आपत्ति की बात है वहाँ छोटा छोटा तीन बार, ठीक। और किसी का प्रश्न है आज सारे प्रश्न पूछ लीजिए, अगली बार तुलसी आरती के बारे में बताएंगे, ठीक है। गड़बड़ नहीं करना, अपराध आपको लगेगा, मैंने अपना कर्तव्य कर दिया है, अब मुझे ड्यूटी वर्षी में कोई अपराध नहीं लगेगा, मतलब मैं पर्सनली करूँगा तो लगेगा, पर आप लोग करोगे तो अपराध मुझे नहीं लगेगा। कि बताया जाता है कि जब कोई शिक्षा नहीं दी जाती है तो देने शिक्षा देने वाले को अपराध लगता है, पर मैंने आज ड्यूटी वर्षी के बारे में पूरा बता दिया आपको, अगर आप गड़बड़ करते हैं तो आप लोग को अपराध लगेगा। हाँ पूछिए। वो फिक्स होना चाहिए व्यक्ति, बार बार चेंज क्यों करते हो? नहीं नहीं, देखिए जो सेवा में एक्सपर्ट होता है उसी से सेवा कराएंगे ना, आप जिसको किसी एक्सपर्ट नहीं है वो पता चला वो बीच में पसीना आ रहा सब पूछ रहा है फिर उसको दीपक दे रहा है तो हम उनको नहीं ले सकते, इसमें कोई नहीं। नहीं, जो सोलह माला कर रहे हैं और जो सेवा कर सेवा में जो एक्सपर्ट हैं उनको दीजिए, जो धोती कुर्ता पहने हैं प्रॉपर साड़ी पहने हैं उनको दीजिए, क्योंकि भगवान से डीलिंग जब करते हैं भगवान को सलवार कुर्ता में नहीं करना चाहिए माताओं को, तुलसी जी को सेवा साड़ी परिधान है, सलवार कुर्ता हमारा परिधान नहीं है, सलवार कुर्ता तो ये नॉर्थ इंडिया का पंजाबियों को दिया हुआ है या मुसलमानों को दिया हुआ है, सलवार कुर्ता परिधान नहीं है भारत की संस्कृति का। आप देखिए पुराने जमाने में कोई भी नहीं मिलेगा, या तो गोपी ड्रेस पहनी या साड़ी पहनी है, और तुलसी जी की सेवा कीजिए, और वैसे धोती कुर्ता हमारे परिधान है। तो सेवा के लिए जब वो देने वाला व्यक्ति हो दीपक उपक हो वो धोती कुर्ता पहना हो साड़ी पहना, ठीक है। हाँ ठीक है, और कोई प्रश्न?